प्रभु ने मेरे को बोला बड़ा से भगवान का आविर्भाव के बारे में बताने के लिए तो भगवान का अनंत रूप होता है, इसीलिए ब्रह्म संहिता में बोलते हैं अनादि अनंत रूपम। जैसा हमारा इधर भौतिक जगत होता है वैसा चिन्मय धाम आध्यात्मिक जगत भी होता है। आध्यात्मिक जगत में इस भौतिक जगत में जैसा बहुत सारे ग्रह नक्षत्र होता है, आध्यात्मिक जगत में अनंत वैकुंठ धाम होता है। अनंत वैकुंठ धाम में अनादि काल से भगवान अनंत रूप धारण करके उधर लीला विलास करते हैं। शास्त्र का वर्णानुसार ये जो ब्रह्मांड है चतुर्दश भुवन इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड को लेते हैं इसको भौतिक जगत बोलते हैं। भौतिक जगत का सात आवरण आठ अष्ट आवरण होता है, फिर अष्ट आवरण को भेद करने के बाद विरजा नदी होता है। विरजा नदी का उस पार चित आकाश या परब्रह्म बोलते हैं, चिन्मय आकाश बोलते हैं। तो उधर एक वैकुंठ धाम होता है, वैकुंठ धाम के ऊपर अयोध्या धाम होता है, अयोध्या के ऊपर द्वारका मथुरा और वृंदावन गोलोक वृंदावन उसको बोलते हैं, जिधर भगवान श्री कृष्ण लीला विलास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म एक होने से भी तो अनंत रूप में आत्मप्रकाश किए। जैसा शास्त्र में वर्णन होता है भगवान का मीन शरीर मत्स्य अवतार हुआ था, वराह अवतार हुआ था, नरसिंह अवतार, कश्यप अवतार, अश्व अवतार हुआ था। भगवान का ऐसा जितना प्राणी होता है ना सब रूप में भगवान आ सकते हैं। इस जगत में हम लोग जितना रूप देखते हैं तो भगवान से ही रूप प्रकाश होता है ना, इसलिए भगवान जो के रूप में इधर आविर्भूत हो सकता है। नरसिंह रूप में आविर्भूत हुए थे, पुराण में ऐसा वर्णन आता है भगवान एक बार शेर रूप में आविर्भूत हुए थे, टाइगर टाइगर निकाल देते, और एक बार भगवान मच्छर रूप में आए थे, मच्छर मस्कुलर कंडीशन। तो ऐसा ऑर्डिनरी मस्कुलर नहीं होगा, कॉन्टिनेंट नहीं पावरफुल मस्कुलर है। तो भगवान ऐसा परित्रण या साधना विनाशा के दुष्कृतान धर्म संस्था बना रखा है सब भगवान योगे लिए। हर युग में भगवान भिन्न भिन्न रूप में आते हैं लीला विलास करने के लिए, और असुरों को वक्त विनाश करने के लिए, साधुओं को उद्धार करने के लिए, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए। तो वराहदेव और नरसिंह भगवान ये भगवान का आदि अवतार होता है, क्योंकि ये अवतार का सृष्टि का प्रारंभ में हुआ था। ब्रह्मा जब पहले सृष्टि किए उस समय वराहदेव और नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ था। तो शास्त्र में इसे वर्णन आता है वैकुंठ में पहली बार लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी देवी नारायण का पाद सम्मान करते थे, पैर दबाते थे। तो लक्ष्मी देवी ने पूछते नारायण भगवान को, तो नारायण भगवान का शरीर तो बहुत नरम होता है, भगवान का बहुत ताकत है, लेकिन हम लोग ऐसे मसल्स वाला ताकत नहीं, मसल्स का ताकत नहीं, उनका ट्रांसेंडेंटल ताकत है, उनका शरीर बहुत नरम होता है। तो माता लक्ष्मी देवी जब उनका पैर दबाते थी तो उनको मन में प्रश्न आया, तो लक्ष्मी देवी पूछे नारायण को, प्रभु तुम्हारा शरीर इतना नरम है, कोमल शरीर है, तो मैं सुना तुम बहुत बड़ा बड़ा दैत्य असुर के साथ युद्ध करते हो, उन लोग का शरीर तो जैसा लोहे जैसा ऐसा है, तुम्हारा इतना माखन जैसा शरीर कोमल नरम है, इस शरीर को देखे तुम कैसा लोगों से लड़ाई करते हो। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराने लगे, ओ तुम मेरा लड़ाई देखने चाहते हो, ठीक है मैं दिखाऊंगा ऐसा बातचीत करता था। तो दरवाजे पर को आवाज आया मेन गेट पर, कुछ झगड़ा करते हैं, एक आवाज आया। तो भगवान विष्णु का अंतर्ज्ञान होता है, तो भगवान तो अंतर्ज्ञान होता है, उनका मालूम पड़ेगा क्या हुआ। वैकुंठ में जय विजय द्वारपाल होता है। वैकुंठ में भगवान का अंदर भाग जाने के लिए 7 गेट 7 दरवाजा क्रॉस करने पड़ता है। तो उधर ब्रह्मा का मानस पुत्र चतुष कुमार होता है, सनक सनातन सनत कुमार सनंदन। वो इस धरती इस ब्रह्मांड का पहले जन्म होने वाले मनुष्य होते हैं। कल ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा कैसे जन्म हुए थी? तो ब्रह्मा का पिता माता कौन है मालूम है आपको?
भगवान।
ब्रह्मा किसे जन्म लिए? उनका माँ कौन है? हाँ, इसलिए वो अजोनी संभूता होता है, क्योंकि माता नहीं है, वो अजोनी संभूता होता है। तो भगवान का नाभि पर तो स्वयं प्रकटित हो गए, तो प्रकटित होने पर उनका तो भगवान का निर्देश था, तुम्हें संसार को प्राणियों में भर दो। तो ब्रह्मा जी सोचते है क्या करो, तो उनका मन से पहले 4 संतान उत्पन्न हुए थे, सनातन सनत कुमार सनंदन सनत। ये 4 संतान को देख के ब्रह्मा जी को बोले, तुम जाके अभी संसार करके इस संसार को प्राणियों में भर दो। तो चतुष कुमार ने बोले, नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये संसार में हम लोग घुसने वाला नहीं, ये बहुत बंधन है, इधर जाने से बहुत दिक्कत है, हम लोग ब्रह्म अनुसंधान करेंगे। तो पिता का बात सुने नहीं, तो ब्रह्मा जी बहुत खुश आ गया, आपका घर में आपका संतान बोला कि मैं बाबा जी बन जाऊंगा, ईश्वर बन जाऊंगा, आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? अरे आपको गुस्सा आएगा नहीं, ब्रह्मा को भी गुस्सा आया था। अनेक लोगों ने बोलते हैं ऐसा, कोई घर में किसी का संतान भक्त बन जाता है, ब्रह्मचारी बन के ईश्वर ज्वाइन करते हैं, तो उसको डर आता है, बोलते तुम घर से भाग जाते हो, इसको तुमको मालूम है पिता माता को अशांति करके घर से भागोगे तो तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं होगा। माँ को पिता को अशांति करके घर से भाग जाते हो, ऐसा बोलते हैं ना लोगों ने। लेकिन देखो ब्रह्मा जी शिष्य का पहले एक उदाहरण रख के गए, शिष्य का पहले तो संतान जन्म हुआ, वो पिता का बात सुना नहीं, बोला नहीं मैं भगवान को आराधना करूंगा, मैं संसार में नहीं घुसना। लेकिन पिता जी बहुत गुस्सा आ गया, या जो कुछ पिता जी गुस्सा आ जाएगा तो पुत्र उनका बात नहीं सुनेगा। लेकिन ब्रह्मा जी सोचते है कि मेरा पुत्र है, लड़का है, इन लोगों पर मैं गुस्सा करूंगा, क्रोध हो जाएगा तो इन लोगों का अनिष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कोशिश की गुस्सा नहीं करने के लिए, क्रोध क्रोधांत नहीं होने के लिए, लेकिन उनका क्रोध इतना जोरदार क्रोध था, वो संभाल कर रख नहीं पाए। एक क्रोध एक शिशु रूप धारण करके उनका एक भ्रू दोनों भ्रू का बीच से निकल गया और नील शिशु उत्पन्न हुआ। जब जन्म हुआ तो शिशु रोने लगा, रोदन करता था, रोदन करना करता था, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। तो रुद्र भगवान शिव भगवान ब्रह्मा जी का एक भ्रू से आविर्भूत। तो चतुष कुमार ऐसा मुक्त आत्मा थे और निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करते थे। चतुष कुमार वो लोग अभी भी है, लेकिन उनका साइज इतना छोटा छोटा है, वो नंगे अभी भी नंगे रहे हुए, खूब कोमल सिद्ध है उनका, शत्रु मित्र पहचानते नहीं, वो ब्रह्मानुसंधान करता है, वो हर जगह पर जाने वाला है, भौतिक जगत में चिन्मय जगत में हर जगह पर जा पाएंगे। ये चतुष कुमार होता है, ब्रह्मा का पहला संतान होता है। तो चतुष कुमार ऐसा घूमते होते घूमते घूमते जाकर वैकुंठ का दरवाजे पर पहुंच गए, तो 6 दरवाजे क्रॉस कर लिए, लास्ट दरवाजा कपाट जय विजय बैठे हुए। तो जय विजय तो भगवान जैसे देखने के लिए उसका चतुर्भुज रूप धारण करके रहता है, पहरा देता है। तो जय बच्चे बच्चे लोग कैसे घुस जाते हैं, उन लोगों को मालूम पड़ा नहीं कौन है, तो रोक दिया उन लोग। जब रोक दिया, अरे तुम वैकुंठ में आए, वैकुंठ का मतलब क्या, इधर कुंठा नहीं है, कुछ द्वंद भाव नहीं है, शत्रु मित्र भाव नहीं है, वैकुंठ होता है, और तुम हम लोग को रोक दिया, तुम्हारा द्वंद भाव है, शत्रु मित्र भाव है, तो तुमको हम लोग अभिशाप दे देंगे। तो ऐसा जय विजय का साथ चतुष कुमार का बात सुनता था, तो अंदर में भगवान विष्णु को पता लग गया, चतुष कुमार आके मेरा भक्त को श्राप दे देंगे, तो इसको रोकना चाहिए। तो भगवान नारायण साथ साथ सोचने लगे तो हमको मेष गति पर जाने पड़ेगा। कोई गुस्सा करता है तो उसको शांत करने के लिए दस है तो स्त्री को साथ में लेके जा। तो भगवान लक्ष्मी देव को बोलते हो समय से साथ में जा रहा और उधर अवस्था को खराब है तो संभालना पड़ेगा, तुम्हें साथ में जाना पड़ेगा। तो साथ में लेके गए, तो साथ में लेके जब गए तो सुने क्या ना, तो दुश्मन देखो तुम्हारा द्वारा पर वैकुंठ धाम है, इन लोग का मंत्र इतना कुंठ है हम लोग को जाने नहीं देता है। तो भगवान विष्णु तो बहुत एक्सपर्ट मैनेजर है, इसीलिए मेंटेनेंस उनका हाथ पर है ना। देखो कोई हमारा मकान में कोई पहरादारी है, दरोगा है, कोई बाहर का आदमी आकर घुसने के लिए कोशिश करेगा तो हमारा दरोगा में से झगड़ा करेगा, तो मैं जाके क्या करूँ? दरोगा में सफर करना चाहिए ना, दरोगा में सफर करना चाहिए। तो भगवान तो दरोगा में सफर नहीं किए, भगवान जाके दरोगा को जोर से डांटने लगे, अरे तुम लोग क्या कर दिया, ब्राह्मण लोग को तुम क्यों रोक दिया, तुमको मालूम है मैं कैसा भगवान बना, मैं भगवान बना ये लोगों का चरण का रेती धुला लेके मस्त में लगा तो इसलिए मैं भगवान बना। तुमको मालूम है ये लक्ष्मी देवी क्यों मेरे पास हाथ में रहते छोड़ के जाते नहीं, ये ब्राह्मण लोग कृपा से मेरा ऐसा होता है और तुम लोग ऐसा करते हो, तुमको बहुत शांति बोलना चाहिए, मैंने ऐसा जानते थे इतना जोर से जानते जय विजय को। तो चतुष्क मैंने सोचते ना कि किसको डांटते हैं, जानते हुए डांटते ना, मेरे को डांटते हैं, हम लोग डांटते हैं। बंगाल में कहावत है ना, कोई क्या कहावत है, जी के मेरे बहू के शिक्षा दान। तो बहू जो बधु होता है डॉक्टर उनको डांट नहीं करते है, तो जी तो मैं समय को डांटते हैं जो देखते है उनका ऊपर है। चतुष्क मैंने सोचने लगे डांटते ना हम लोग डांटते ऐसा करके। तो फिर बोलने के बाद तो भगवान तो जैसे तो उनका भक्त है, तो भगवान ने बोले सतीश कुमार जी के ही बहुत बुरा काम कर लिए लेकिन ये हमारा भक्त है, थोड़ा थोड़ा कम अभिशाप दे दीजिए, कम कम का अभिशाप दीजिए। सतीश कुमार तो अभिशाप देने के लिए तैयार हो गए, तो अभिशाप श्राप दे देंगे। तो भगवान ने बताया थोड़ा कम करके अभिशाप दीजिए, श्राप दीजिए। तो सतीश कुमार ने पूछे जय विजय तुमको क्या चाहिए, तुमको तो बैठूंग छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तुम बैठूंग रहने योग्य व्यक्ति नहीं हो, फिर तुम बताओ अभी तुमको भौतिक जगत में जाने पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा दो चॉइस है, तुम इधर से भागने पड़ेगा, तुम सात जन्म लेने पड़ेगा, भक्त होके जाएंगे रहेंगे सात जन्म बाद में फिर इधर वापस आएंगे, तुम भक्त होकर रहेंगे, असुर होकर जाएंगे तीन जन्म में आ जाएंगे, तुमको क्या चाहिए, असुर होकर जाएंगे तीन जन्म में वापस आएंगे न भक्त होकर जाएंगे सात जन्म में वापस आएंगे। जय विजय ने सोचने लगे सात जन्म इधर से हम लोग बाहर रहेंगे फिर बहुत कठिनाई होगा हम लोग, भगवान को छोड़ के भौतिक जन्म में सात जन्म में रहेंगे ठीक है, हम लोग असुर बना दीजिए और तीन जन्म में वापस आ जाएंगे। तो तथास्तु बोल, तो ऐसा क्यों उनका मन में आया, जय विजय जो भगवान का परम भक्त होता है उनका मन में वैकुंठ में रहने वाला है, उनका मन में क्रोध आ जाता है, साफ देने के लिए इज्जत हो जाते हैं सतीश कुमार ने और बोलते हैं ठीक है मेरे को असुर बना दो। वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं होता है भगवान का इच्छा को बगैर, तो ऐसा सतीश कुमार तो श्राप दे दिए, श्राप देने के बाद दोनों ग्रुप खूब दुखी दुखी बन गए, सतीश कुमार ने दुखी हो गए हम लोग क्यों ऐसा किए, जय विजय बहुत दुखी हो गए हम लोग क्यों लोग ऐसा रोक दिए। तो दोनों ग्रुप जाकर भगवान विष्णु के पास प्रार्थना किए, प्रभु मतलब बहुत बड़ा अपराध हो गया क्षमा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने बताया नहीं तुम्हारा कुछ अपराध नहीं, ये तुम्हारा जो मनोभाव हमारा वैकुंठ में किसी का ऐसा मनोभाव नहीं आता है, वैकुंठ में क्रोध नहीं होता है, बैकुंठ को साफ नहीं देता है, लेकिन तुम्हारा मन में ऐसा भाव को उद्भव किया क्योंकि मेरे तो अभी भौतिक जगत में लीला करने का टाइम आ गया, इसलिए मैं लीला को भौतिक जगत में प्रकाश करने के लिए इस आध्यात्मिक जगत बैकुंठ में मेरे को कुछ सूचना करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे मन में ऐसा भाव जगाया, लेकिन भगवान पर कारण का बगैर कुछ करते नहीं। क्यों भगवान के मन में ऐसा आया? इसलिए हमारे आचार्य लोगों ने बोलते हैं, भगवान ने क्यों चाहा ऐसा, उनका दोनों भक्त असुर बन जाएंगे, प्रिय द्वारपाल असुर बन जाएंगे। इसके बारे में आचार्य लोगों ने बोलते हैं, कुछ दिन पहले इस जय विजय दोनों द्वारपाल गेट पर बैठे थे, तो सिक्योरिटी लोग तो कुछ काम नहीं, बैठना ही है, तो क्या करेंगे बैठे बैठे। वो गोसिप करता था, गप सप करते थे, लेकिन उधर आड्डा मारते थे, आड्डा मारते थे, लेकिन बैकुंठ धाम में आड्डा मारा मारना इधर देता ऐसा नहीं है। वो आड्डा मारा भगवान के बारे में आड्डा मारते थे, भगवान के बारे में चिंता करते थे। तो दोनों द्वारपाल पर आपस में बातचीत करते हैं, जय विजय, एक बोलते हैं दूसरा को, देखो हमारा प्रभु तो भगवान है, भगवान का सब कुछ आनंद मिलना चाहिए, तो हमारा प्रभु नारायण विष्णु तो सबसे आनंद पाते हैं, लेकिन एक आनंद उनको प्राप्त नहीं होता है। क्या आनंद प्राप्त नहीं होता है? ना रेसलिंग का आनंद प्राप्त नहीं होता है, रेसलिंग जो मल्ल युद्ध होता है ना, कुश्ती, कुश्ती करने का वैकुंठ में कौन कुश्ती करेगा विष्णु के सामने? वैकुंठ में विष्णु कुश्ती कर, विष्णु का ये तो गोलक वृंदावन में ही, गोलक वृंदावन कृष्ण के साथ कुश्ती कर सकते हो, तो वैकुंठ कुश्ती करेगा भगवान विष्णु का कंधे का हाथ भी नहीं उठा करेंगे। भागवत वर्णन दिएगा, ज्यादा से ज्यादा विष्णु हैंडशेक करता है, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। मैं सोचता था ये हैंडशेक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, तो भागवत में लिखा है भगवान विष्णु बड़े हैंडशेक करते हैं, तो उतना ही कर पाएंगे। भगवान विष्णु कांधे के ऊपर हाथ रख नहीं पाएंगे और कुश्ती को करेगा। तो दोनों भक्त का चिंता है जो प्रभु हमारा भगवान है, तो सब तरीके आनंद उनको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन कुश्ती का आनंद प्राप्त नहीं हो जाए तो भगवान के साथ कुश्ती कौन करेगा? तो दोनों सोचते हैं हम दोनों ठीक है कुश्ती करने के लिए, लेकिन फिर हम लोग कैसे कुश्ती करेगा? हम तो उनका दास है, दास प्रभु के साथ कुश्ती करेगा तो कुश्ती आपका जमेगा नहीं, थोड़ा उनको विपक्ष भाव होगा तो कुश्ती आपका प्रभु का अच्छा आनंद लगेगा। तो ये भक्त का अंदर में अंतर में जो भाव है, तो भाव में जनार्दनों का अंतर्जन होता है, तो भगवान विष्णु को मालूम हो गया मेरा भक्त लोग चाहते हैं मेरा विपक्ष रूप भाव को धारण करके मेरे साथ कुश्ती करेंगे, तथा तुम्हारा मनोवासना, तुम्हारा मनोवासना मैं पूर्ण कर दूंगा। तो इस सब भगवान का एक एक लीला के पीछे हजारों कारण होता है, भगवान एक कारण के लिए धराते नहीं, लेकिन इतना समय कितना कारण हो गया, जय विजय आ गए, लक्ष्मी देवी का भी वासना था, तुम कैसे युद्ध करते मेरे को देखना है, तो भगवान विष्णु तुमको देखना चाहिए, ठीक है तुमको देखाऊंगा कैसे युद्ध करता हूँ, तो सबको वासना को मैनेज करते हैं, ये भगवान विष्णु है। तो इसलिए तो श्राप प्राप्त हो गए, जय विजय इस धरती पर जन्म लेंगे। उस समय ऐसा हुआ जो कश्यप ऋषि वो भी प्रजापति होते हैं, उनका थाकिन कन्या, थाकिन तेरा कन्या होता है, तो दक्ष प्रजा तेरा कन्या साध्य जितर दीति और अदिति ये दोनों होते हैं। दीति जो दैत्य का माता होता है उनको दीति बोलते हैं, और आदित्य देवताओं को माता होता है उनको अदिति बोलते हैं। तो एक दिन शाम का समय था, दीति का मन में खूब वासना जगी, मेरा पुत्र संतान चाहिए, तो कश्यप मुनि तपस्या समाप्त करके यज्ञ करके वापस आ गए घर पर। तो संध्या शाम का समय था, तो दीति ने कश्यप मुनि को प्रार्थना की, जब कृपा कीजिए मेरे संतान चाहिए, मैं तुम्हारा संग कामना करता हूँ। तो कश्यप मुनि दीति का बहुत प्रशंसा की, तुम कितना महान हो, कितना श्रेष्ठ हो, नारी जाति का खूब प्रशंसा की, बोले देखो अभी जो समय इस समय ठीक समय नहीं है, अभी तुम्हारा संग करना ठीक समय नहीं है, ये शाम का समय होता है, ये शिव का समय है, शिव मुहूर्त बोलते हैं, सुबह जैसा ब्रह्म मुहूर्त बोलते है ना, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है और शाम को शिव मुहूर्त होता है, तो शिव भगवान अभी वृक्ष का ऊपर आरोहण करके भ्रमण करते हैं, तो इस समय संग करने से ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान का इच्छा से दित्य का मन इतना प्रबल वासना था ये संतान प्राप्त करने के लिए, तो बहुत प्रार्थना की दित्य मैंने जब अभी संतान चाहिए। तब कश्यप मुनि को मालूम है कि भगवान का इच्छा ही है जो कुछ होगा। तब कश्यप मुनि दित्य का संग करके खंग करने के बाद तो दित्य बहुत भयभीत हो गए, क्या होगा कि शिव का चरण में मेरा बहुत अपराध हो गए हो गया, तो शिव तो क्रोधान्वित हो जाएंगे, मेरे संतान को विनाश हो जाएगा, कृपा करके मेरे संतान का रक्षा कीजिए, तो मैं बहुत गलत काम कर दी। तो बहुत सोचती थी दीति माता। तो कश्यप मुनि ने बताया ठीक है तुम बहुत गलत बात काम की, और इतना गलत काम की तुमको सिर्फ तुमको ही दुख नहीं मिलेगा, ये सारा दुनिया को दुख देने वाले दो संतान तुम्हारे गर्भ में आएंगे, सारा ब्राह्मण वैष्णव नारी जाति सबको दुख दुर्दशा देंगे। तो दीति और भयभीत हो गई, तो अभी क्या होगा। तो कश्यप मुनि ने बताया देखो ठीक है तुम्हारा घर में दो असुर जन्म लाभ करेंगे, लेकिन दो असुर इतना प्रतापशाली बन रहे कि कोई भी लोग को मार नहीं पाएंगे, तो भगवान स्वयं आके सुदर्शन चक्र में इसको मारेंगे। तो दित्य बहुत खुश हो गए, ओ मेरा बहुत भाग्य है, तो भगवान स्वयं आके मेरा पुत्र को मारेंगे तो उनका तो मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे। और कश्यप ने बताया तो तुम्हारा जो पुत्र है तुम्हारा नाती बनेंगे ओ प्रहलाद महाराज, बहुत बड़ा भक्त बनेंगे। और दित्य थोड़ा आश्वस्त हो गए, लेकिन गर्भ में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष रूप में गर्भ में जब आविर्भूत हो गए तो दित्य सोचते थे ये तो मेरा गर्भ से निकलने से सब देवताओं को वैष्णव को बहुत उत्पीड़न करेंगे, तो जन्म देने के लिए चाहते नहीं चाहते थे, नहीं ऐसा दुर्बत लोगों में जन्म नहीं दूंगी, 100 साल पकड़ के रखे गर्भ में, 100 साल तक पकड़ के रखे। और गर्भ में रखने से क्या होगा, ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष इतना दुर्दांत थे दुष्ट करते थे, तो जन्म होने के बाद उत्पीड़न में क्या करेंगे, एकदम गर्भ में थे तब से उत्पीड़न शुरू हो गया। हाँ इतना प्रतापशाली थे तो मातृ गर्भ में थे सूर्य चंद्र का तो ज्योति को निष्प्रभ कर दिए, इतना तो विभिन्न प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार का दुर्लक्षण कुलक्षण देखने मिला, तो सब अतिष्ट हो गए, सारा समस्त ब्रह्मांड व्यस्त हो गए। फिर एक बहुत अशुभ समय पर दित्य का गर्भ से दो पुत्र जन्म लाभ किए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, कौन बड़ा है कौन छोटा है मालूम है, बड़ा भाई कौन है, दोनों ही बड़ा है, हिरण्याक्ष भी बड़ा है और हिरण्यकश्यप भी बड़ा है। और आते रहने लगे बोलते हैं, कोई बोलता है किधर शास्त्र लिखा है हिरण्यकश्यप बड़ा भाई, किधर बोलता है हिरण्याक्ष बड़ा भाई, हिरण्याक्ष छोटा था हिरण्यकश्यप बड़ा था, इसलिए ना हिरण्यकश्यप का प्रभाव इतना था तो हिरण्यकश्यप गर्वित होकर गदा लेके गया था, हमारा भाई ब्रह्मांड का मालिक है वो किसी को नहीं डरता था, बड़ा भाई हिरण्यकश्यप, ये क्यों दोनों बड़ा कैसा बने, शास्त्र में से वर्णन किया जाता है जो दित्य माता का घर में पहले प्रवेश किए जैसे पहले जो प्रवेश किए वो बड़ा है, तो दित्य का घर से निकलने वाला दूसरा वाला निकले थे तो वो बड़ा होता है, जो पहले प्रवेश किए वो तो बाद में निकले, तो इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों में शास्त्र के जगह बड़ा नहीं बनता। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बचपन से इतना दुर्दंत थे सबको मारते थे, बच्चे लोग वो लोग खेला के साथ सुख के साथ होता था, वो लोग खेला कैसा करते थे ये हमारे बच्चे लोग खेला करते थे, वो लोग खेला था तो बच्चे लोग बच्चे लोग कुआं में फेंक देंगे ये उनका खेला था, इतना आनंद होता था, ऐसे खेलते थे। आज सब मुनि ऋषि देवता को बहुत उत्पीड़न करते थे, और हिरण्यकश्यप इतना प्रतापशाली बन गए सब देवता का उनका नियंत्रण में रख दिए, जो अग्नि देवता वायु देवता और पानी का देवता होता है, अग्नि वायु और पानी ये देवताओं को निर्देश पर नहीं चलते थे, हिरण्यकश्यप का बात पर चलते थे, जितना अप्सरा गंधर्व थे देवताओं को आनंद के लिए नहीं नाचते थे, सब हिरण्यकश्यप को आनंद के लिए नाचते थे, सब देवता लोग जाके हिरण्यकश्यप को महिमा गान करते थे, जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज का वर्णन करता है, नारद मुनि बोलते हैं अरे देवता का बात छोड़ो, मैं भी जाकर हिरण्यकश्यप का भजन पालन कर काम करता था, मेरी पूजा का ऐसा करता है। इतना प्रतापशाली हिरण्यकश्यप, इतना प्रभाव था। तो जब बोलते अभी इधर बारिश हो तो उधर बारिश हो जाता, दिन में बारिश नहीं होता था, रात को ही बारिश होगा। और समुद्र से हीरे मोती सब नदी का द्वारा उनका घर पर ले आते थे, इतना प्रभाव था। वो उनका भ्रू चलाना करते थे, देवता लोग बड़े उठ पाते होते थे, इतना प्रभाव था। तो इतना प्रभावशाली भाई था जिसका, उनको क्या डर है। तो हिरण्यकश्यप गदा लेकर वो सारा ब्रह्मांड वितरण करता था। तो हिरण्यकश्यप को हिरण्यकश्यप गया वरुण राजा के पास, गया वरुण देवता। तो वरुण देवता को, हे वरुण देवता बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो वरुण देवता बाहर आ गए समुद्र के अंदर में। ओ वरुण देवता, मेरे को भिक्षा चाहिए आपके पास। तो तुमको क्या भिक्षा चाहिए, तुम हिरण्यकश्यप का भाई हो, तुमको क्या भिक्षा चाहिए। तो जोकिंग जोकिंग करते हैं उसके साथ, मजाक मजाक करता है। हमको भिक्षा चाहिए, क्या भिक्षा चाहिए, मेरे को तुमसे युद्ध में क्या करता हूँ, मैं युद्ध कर रहा था। तो वरुण देवता ने सोचने लगे ये तो दुष्ट आदमी है, इसका युद्ध में क्या करूँ। तो वरुण देवता, अरे भाई देखो तुम जैसा योद्धा हो, मैं तो बुढ़े आदमी हूँ, मेरे साथ युद्ध करके तुमको आनंद नहीं मिलेगा। तुमको युद्ध करके आनंद है तो भगवान विष्णु से युद्ध करो, वो ताकत वाला आदमी है, तुमको अच्छा जमेगा। तो हिरण्यकश्यप विष्णु को ढूंढ रहे, विष्णु किधर है। तो इतना प्रतापशाली थे, तो उनका प्रभाव से उस समय एक विषय दो तरीका पढ़ना आता है। कभी बोलते हिरण्यकश्यप एक पृथ्वी को गर्म सागर में निक्षेप किया, और एक शास्त्र में बताता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि कर देते थे तब एक धरित्री एक सब पानी मग्न हो गया था। तो धरित्री कभी कभी असुरों का उत्पीड़न से निम्नगाम हो जाता है, प्रभुपाद ने ऐसे बताते हैं। तो आजकल तो असुर राक्षस लोग है, आजकल द्वापर युग में थे ना रावण हिरण्यकश्यप, अभी है ना, अभी नहीं ना। अभी लोग ने सोचते हैं राक्षस बनेंगे असुर बनेंगे, बड़ा बड़ा दांत होगा, ऐसा बाल होगा, ऐसा मुख होगा, ये जो असुर राक्षस होता है। आजकल भी राक्षस असुर है, सब बूथ सुखता ही पटके बैठे हुए, देखने के लिए अच्छा लगता है, अंदर में सब असुर है, अंदर में सब राक्षस है। आजकल ऐसा राक्षस पिशाच है, नर पिशाच है, इतिहास में देखा गया नहीं, पुराण में भी ऐसा बना नहीं। असुर लोग हो जाते हैं, उनका शत्रु देवता का साथ झगड़ा करते थे, मारते थे ना। पहले जमाना में शत्रुओं को मारते थे, आजकल क्या होता है भाई भाई तो मार डाल देते हैं, माँ भी बच्चा को मार डाल देते हैं, माँ उनके गर्भ में बच्चा को मार देते हैं। कभी ये सुना है आपको, इतिहास में है, पुराण में है, ये हमारा सोफिस्टिकेटेड डिमन सोफिस्टिकेटेड डिमन है। आजकल सब राक्षस बन गए, पिशाच बन गए, लेकिन अभी जाते पुण्य पिशाच है। ईशा माँ गर्भ में शिशु को हत्या करते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया देखो हिरण्यकश्यप के टाइम में पृथ्वी क्यों गिर गया। प्रभुपाद दिशा देते हैं आजकल जो राक्षस मनोवृत्ति का मनुष्य मनुष्य होता है, पृथ्वी को बहुत उत्पीड़न करता है, पृथ्वी का नीचे से गैस निकालता है, बिना फ्यूल निकालता है, इससे पृथ्वी का भारसाम्य नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी गिर जाता है। उस समय क्या हुआ, पृथ्वी गिर जाके गर्भ सागर का अंदर में घुस गया। आग पाक होता है, ये क्यों होता है, इतना अनोवल अवनोवल क्यों देखा जाता है, ये असुर का प्रभाव। जब असुर का प्रभाव धरती पर बढ़ जाता है ना, धरती को सहन नहीं होता है, धरती से उसका अच्छा क्वालिटी को लुप्त कर देता है। ये धरित्री से हम लोग उपभोग करने के लिए खाना पीना सब धरित्री देता है ना। आजकल देखो खाना में कुछ टेस्ट है, टमाटर होता है, धनिया पाता होता है, उसमें गंध नहीं होता है। पहले जब बचपन में मेरा याद है जब घर में दाल बैल होता था तो दाल का सुगंध अपना सारा घर पर आ जाता था। अभी लोग दाल की गंध ही नहीं, लोग सोचते हैं हम लोग ज्यादा इंद्रिय भोग करते हैं, लेकिन नहीं, इंद्रिय भोग नहीं होता है, दुर्भोग होता है। क्यों ऐसा होता है? फूल का गंध नहीं होता है, पत्ते का गंध नहीं होता है, फूल कभी देखने के लिए बहुत सुंदर ताजा, फिर खाने में कुछ रुचि नहीं होता है, क्यों होता है? तब पृथ्वी सब सुगंध चीज को अपहरण कर लेता है, ये असुर का जो प्रभाव बढ़ जाता है, पृथ्वी अच्छा गुण को अपहरण करके ले जाता है, तो उस समय ऐसा हुआ था, असुर का प्रभाव से पृथ्वी नीचे गिर गया। तो कैसा तो भागवत में वर्णन होता है, भगवान विष्णु जब सृष्टि करते हैं, सृष्टि काम में मग्न थे, झाड़ी तीर्थ पानी में डूबे रहे थे, तो मनु और सत्यरूपा का उद्भव हुई, तो मनु सत्यरूपा को ब्रह्मा जी ने बताया तुम अभी धरित्र का पालन करो, तो मनु ने धरित्र किया है, देखा ही नहीं जाता है, तो पानी का अंदर चला गया, अभी क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने सोचने लगे तो क्या होगा अभी, अभी तो मैं जो सृष्टि काम करता हूँ धरित्र पानी का नहीं चला गया, हे प्रभु हे भगवान आप मेरे को सहायता दीजिए क्या करो। तो ये सोचता है तो ब्रह्मा का नाक से एक छोटा जैसा फ्लाई फ्लाई का मक्खी पक्षी मक्खी मक्खी जैसा तो ब्रह्मा का नाक से निकला, आत्मा ने जाके बहुत विराट रूप धारण किया, विराट शुअर का रूप, शुकर का रूप धारण किया, और शुकर लोगों ने मुझे समझ नहीं कौन है, कौन आविर्भूत हो गए, तो शुकर का रूप धारण करके फिर भगवान जाके समुद्र का अंदर घुसे, और समुद्र दो भाग हो गया, समुद्र डरने कांपने लगे, समुद्र रूप धारण करके भगवान के पास आ गए, मेरे को रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान का अंदर जाके तो तब तक हिरण्यकश्यप ढूंढता था, तो भगवान कौन है? भगवान विष्णु ढूंढता था, तो भगवान विष्णु तो मिला नहीं, स्वरूप धारण के भगवान आ गए, तो हिरण्यकश्यप तो भगवान बराहदेव के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, भगवान गदा लेके बहुत जोर जोर से मारे, इतना जोर से मारे हिरण्यकश्यप को, तो हिरण्यकश्यप ने देह त्याग किया, तो देह त्याग किया करके क्या हुआ हिरण्यकश्यप अवस्था, किधर गया मरने के बाद हिरण्यकश्यप किधर गया? ऊपर चला गया, मोक्ष हो गया, मोक्ष दो भाई थे जय विजय, वो लोग चाहते ना तीन जन्म होगा हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप फिर जन्म हुए, सप्त युग में हिरण्यकश्यप का आविर्भाव हुआ, तो तृतीय युग में फिर वो लोग फिर आविर्भूत हुए, किस रूप में आविर्भूत हुए? रावण और कुंभकर्ण रूप में आविर्भूत हुए, फिर और एक जन्म लेने पड़ेगा, फिर द्वापर युग में आ गए कंस में शिशुपाल और दंतवक्त्र, शिशुपाल और दंतवक्त्र रूप में आए, तो तीनों जन्म हुआ, तो शिशुपाल दंतवक्त्र में जब आए तब ऐसा देखा है भगवान कृष्ण का शरीर में लीन हो गए, लेकिन वो लोग वापस चले गए, फिर सातवें वो लोग वापस गए नहीं, फिर और भी जन्म लिए वो लोग, सत्य युग में आए, तृतीय युग में आए, द्वापर युग में आए हिरण्यकश्यप, और कलि युग में वो जगह माधे गए, ये महाप्रभु का बलदान देता होता है, ये चैतन्य महाप्रभु महाबलदान में होता है, कृष्ण अवतार में राम अवतार में नरसिंह अवतार में भगवान का दयालु है, इतना दयालु है जो असुर है जो उनको मारने के लिए आते हैं उनको भी उद्धार करता है, लेकिन असुरों को मारने के बाद उद्धार करता है, तो चैतन्य महाप्रभु किसी को मारते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु इतना दयालु है, तो दूसरा कोई भी अवतार में इतना दयालु नहीं होता है, चैतन्य महाप्रभु क्यों इतना दयालु है? कृष्ण तो भगवान है, राम तो भगवान है, नरसिंह भी भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो चैतन्य महाप्रभु अंदर में इतना दया भाव क्यों है मालूम है? दया का कारण क्या है? हाँ, शास्त्र बोलते हैं जब भगवान राम अवतार में आए थे तो भगवान को वनवास मिला 14 साल, सीता जी और लक्ष्मण वनवास में गए थे, तो दंडकारण्य में थे, तो भगवान राम ने देखे एक दिन एक जगह पर बहुत पहाड़ जैसा हड्डी हड्डी बोन्स हड्डी कंकाल से पड़ा रहा है, तो रामचंद्र ने पूछे इस हड्डी कंकाल किसका होता है? तो पास में जो लोग थे राक्षस असुर लोगों ने तो मुनि ऋषियों को खा ले, और मुनि ऋषियों का हड्डी और कंकाल इधर पड़ा रहा है। तो रामचंद्र जब ऐसा देखे ना, उनका बहुत गुस्सा आ गया, आंखों लाल हो गया, ठोट कांपने लगा। तो साथ साथ उन्हें कोदंड धनुष बाण को धारण किए, मैं शपथ करता हूँ इस धरती को राक्षस और असुर को सब समाप्त कर दूंगा, एक भी राक्षस और असुर नहीं रखूंगा। ये लोग मुनि ऋषि मेरा भक्त के साथ आता है तो एक भी राक्षस असुर नहीं रखूंगा। बहुत गुस्सा करते थे रामचंद्र, जो आंख को लाल करते थे। तो सीता माया पास में बैठे थे, सीता माया बोले प्रभु प्रभु क्यों इतना गुस्सा करते हो? तुम्हारा रामचंद्र बहुत गुस्सा करते, हाँ मैं सब कर अभी सब कर मार करूंगा। तो सीता देवी माँ होते हैं ना, वो देवताओं के माँ होते हैं, असुरों के माँ होता है, सबका माँ ही होता है। माँ का कोई बच्चा लड़का अच्छा होता है जो बुरा होता है, बुरा होने से माँ का पता हर आदमी का ऊपर होता है, हर लड़का का ऊपर होता है, इतना बुरा होने से। तो माता सीता देवी का बहुत कृपा आ गया, प्रभु इसे मत कीजिए, ये मेरा सब मेरा संतान है। तो रामचंद्र ने बताया ठीक ठीक है, मैं इस अवतार में मैं असुर लोग को मारूंगा, धनुष बांध अस्त्र में मारूंगा। अरे तुम्हारा इच्छा पूर्ण करने के लिए नेक्स्ट अवतार में जब आऊंगा, कृष्ण रूप में आऊंगा, तब मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। इसीलिए द्वापर युग में जब भगवान रामचंद्र कृष्ण रूप में आए तब कोई अस्त्र धारण नहीं की, जब तक वृंदावन में थे तब तक अस्त्र धारण नहीं की। जितना भी असुर को मार डाले अस्त्र तो नहीं मारे ना, पुतना को अस्त्र मारे, शकटासुर बकासुर सब हाथ में फाट दिए, किसको दूसरे को मारते थे। तो राधारण ने कहते तुम तो मेरे को बोला थे चाचा जी को नहीं मारेंगे, मेरे को अस्त्र ना मारूंगा, अस्त्र में नहीं मारूंगा, मैं तो अस्त्र धारण नहीं करता हूँ, मैं तुमको बोला ना मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। अरे तुम अस्त्र धारण करते नहीं मारते हो तो इसको मारने से कैसा नहीं बताऊंगा। तब कहते द्वापर युग के बाद में फिर कली युग आएगा। तो राधारानी ने सोचने लगे तो भगवान को तो असुर को जो मार डालते हैं इससे बचाने के लिए मेरे को भगवान का अंदर में आने पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान कृष्णचंद्र गौरचंद्र रूप में आए, गौरचंद्र रूप में राधारानी का अंदर में है। भगवान का करुणामय होता है लेकिन भगवान का अंदर में जो राधारानी आता है ना, तो भगवान का करुणा का प्रभाव दूसरा हो जाता है। ये भगवान का करुणा के लिए, ये राधारानी का करुणा के लिए। राधारानी इतना करुणामय होता है तो राधारानी भगवान कृष्ण का अंदर में प्रवेश करता है। राधा भाव सुगलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र राधारानी का अंग कांति और भाव को अंगीकार करके गौरव रूप में आए हैं। तो राधारानी इतना कृपामयी होता है, तो राधारानी के कारण आज कृष्ण भगवान गौरांग रूप में आके पापी तापी जब तक छिला हरिना ने उद्धार लीला तार तक ही जगाई माधे, जो जगाई माधे आए उनको मारे नहीं, उनको असुर तो भाव को मारता है, असुर को मारता नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु का महाबदान था, एक कारुण्य भाव इसको बोलता है, बहुत मर्सीफुल होता है। भगवान तो मर्सीफुल ही है, भगवान तो कृपालु है, लेकिन गौरांग का कृपालु बहुत विशेष रूप कृपालु होता है। भगवान कृष्ण आए बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम सबको छोड़कर मेरा शरण में आ जाओ, तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, सबको छोड़कर मेरा शरण में आओ, मैं तुमको क्या प्रतिदान दूं? क्या बोले भगवान, भगवान ने क्या बताए? भक्ति वृक्ष का मतलब बताए, अहम तम सर्वापेभ मुख्य से मार, मैं तुमका सब पाप से मुक्त कर दूंगा। तो भक्त लोग पूछता है तुम कैसे भगवान हो, सब छोड़ के तुमका शरणापन्न होगा और तुम तो पाप से मुक्त हो, इतना ही पाप? चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आए, तो बोले तुम पाप से मुक्त नहीं करूंगा, मैं तुमको पाप से मुक्त करूंगा और पुण्य से भी मुक्त कर दूंगा। फिर पाप पुण्य दोनों तुम्हारे दुख का कारण होता है, बंधन का कारण होता है, मैं तुमको पाप को जैसे मुक्त करके कृष्ण प्रेम दिला दूंगा। ये महाप्रभु का महाकारुण्य का कारण होता है। कृष्ण भगवान बहुत करुणामय होता है, कृष्ण भगवान इतना करुणामय होता है जब पूतना कृष्ण भगवान को मारने के लिए आए थे ना, जहां लगा के स्तन में लेपन करके, तो इतना वो असुरी थे, लेकिन कृष्ण भगवान इतना कृपामय थे, तो पुत्र को क्या शास्ति दिए, क्या शास्ति मिला, उनको माता पद दे दिया, इतना बड़ा पद दे दिया, तो उससे ज्यादा कौन कृपालु हो सकता है। भगवान कृष्ण इतना कृपालु होते हैं, हमारा आचार्य लोग ने बोलते हाँ कृष्ण कृपालु है, लेकिन मुक्ति देने के लिए वो असुर को मारते हैं, मार डालते हैं। पुतना का जब मार डाले, पुतना का जो आत्मीय लोग थे, घर का लोग थे, और बहुत खुश हुआ, थैंक यू कृष्ण, तुम मेरा पुतना को गोलक वृंदावन भेज दे, धन्यवाद दे कृष्ण का, धन्यवाद दे है? नहीं नहीं, वो डांटते थे, ये कृष्ण भगवान है, ऐसा कर दिया। और 5000 साल के बाद में हम लोग भागवत पढ़ते, हम लोग ज्ञान आता है, वो भगवत धाम में चला गया, तब तो उनमें ज्ञान नहीं हुआ, तब लोग रोते थे, तो कृष्ण डांटते थे, किसी को मालूम नहीं हुआ। ये गौरांग अवतार में सब लोग देख पाए, जो जय विजय हिरण्यकश्यप का सुख आए थे, कभी इस जगह माधाई रूप में सब लोग देख पाए, फिर जगह माई माधाई नगद में सब लोग देख पाए, ये लोग क्या थे, अभी महापुरुष कृपा से क्या बन गए, परम वैष्णव बन गए। तो क्या कारण, राधारानी, राधारानी बहुत कृपालु होता है, इतना कृपालु होता है। जब राधा रानी वृंदावन में लीला करते थे, तो राधा कुंड हर रोज राधा कुंड जाते थे, सख्यों को लगे नहाने के लिए। एक दिन राधा रानी के पास और सब सख्यों ने आए, दौड़ के आए, ओ राधा रानी देखो बेटा, एक गांव का लड़का लोग क्या करता है, मैं क्या करता है, तो गांव का कुछ दुष्ट लड़के थे, तो एक जैकल, जैकल लोग क्या बोलते, श्याल नहीं, सी जैकल, सी जैकल क्या बोलते हैं, श्याली, ओके सी जैकल, ओके सी जैकल, श्याली को बोलो, तो श्याल का दौड़ के उसको खूब सताते थे, मारने के लिए उसको पिछले दौड़ते थे, तो श्याली बहुत डर गई। हम तो राधारानी तो सक्षम ने बताता है, देखो ये गांव का लड़का लोग इतना बदमाश है, तो श्याली को ऐसा खूब सताते हैं, दौड़ते थे, श्याली गर्त पर घुस गया, गर्त पर गड्ढा में घुस गया, तो गड्ढा में जो घुस गए बच्चे, बच्चे लोग कुछ बच्चे लोग कुछ लकड़ी और कुछ करके उसके पास में रखे, उसको आग लगा दी, और श्याल अंदर में है, वो जल गई। तो राधारानी जब सुने, उनको बहुत दया भाव आ गए, राधारानी रोने लगी, हाँ मैं जब इधर हूँ और मेरा राधा कुंड सामने तट पर ऐसा काम होता है, तुम जल्दी उस श्याल को ले आओ इधर। तो अर्ज मृत श्याल को ले आए, जाओ श्याल को, तो राधारानी उनका पीछे पर हाथ लगाए ऐसा सुनिए, तो श्याल साथ साथ एक सखी रूप बन गई, राधा तुम मेरा साथ रहो, तो मेरा सेवा करो, राधा ने कृपा देखो, इत्यादि सुनो वाला जब क्या नहीं, मंगलाती नहीं क्या नहीं, थोड़ी थोड़ी कृष्ण पहाड़ क्या नहीं, ये राधारानी का मर्जी होता है। और जो राधारानी तो भगवान कृष्ण का अंदर में आए, तो गौरव वहां पर कहता, इसे भाव हो गया होगा, इसलिए इसमें तो विष्णु होना का कुछ नहीं, तो भगवान का कृपा नहीं है, ये राधारानी का कृपा से तो जय विजय को इतना अच्छा मौका मिला। तो पापी तापी जब छो हरिनाम उधर ने जगाए माधाई, इतना पाप किए थे इस धरती पर, इतना पाप कोई करने वाला नहीं है। जब जगाई माधाई का उद्धार हो गया, उसी दिन शाम को सब शिवा संगम में इकट्ठा हो गए, तो भक्त लोग नवद्वीप लोगों ने सुनने लगे, जगाई माधी भक्त बन गए, तो महान दर्शित है, हर रोज किसका घर पर आग लगा देते थे, किसको मार डालते थे, किसका धन अपहरण कर लेते थे, वो वैष्णव बन गए, सब नवद्वीप का लोगों ने आने लग गए शिवा संगम पर। आज ये संवाद सारा दुनिया भर प्रचार हो गया, सब ग्रह नक्षत्र से देवता लोग अंतरिक्ष में आ गए, इंद्र ब्रह्मा जमराज सब आ गए जगाई माधाई का उद्धार देखने के लिए। जय विजय जगाई माधाई रूप में आविर्भूत रहे, उनको भगवान उद्धार करके ताकि ऊपर से प्रणाम करके पहले से वहां पहुंच जाता है। आपका जो एरोप्लेन है, अरब लोग वापस जाते हैं, देवता लोग तो वापस जाते हैं, तो वापस जाने के टाइम सब देवता लोगों ने देखे यमराज का रथ और चलते नहीं, अंतरिक्ष में रुक गए। तो क्या हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, टायर फंक्शन हो गया, क्यों जाते नहीं हो गया? तो उधर तो लोग प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों अंतरिक्ष में रथ रुक गया? तो सब देवता लोग आ गए यमराज के रथ पर, तो देखे यमराज मूर्छा होकर उधर सोए रहे और चित्रगुप्त उधर पास में बैठे हुए। देवता लोग से क्या हो गया यमराज का? तो चित्रगुप्त बोले देखा इस जगह माता का उधर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस जाता है। यमराज ने मेरे को पूछा अरे चित्रगुप्त तुम था नथी पुत्र बन के देखा इस जगह माते क्या किए थे, क्या पाप क्या पुण्य किए थे? तो ब्रह्मा का दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम मिल गया, कितना पुण्य कितना पाप किए थे? तो मैं जमराज को बताया है जमराज मेरे लोग पाप करने का क्या बताऊं, ये लोगों ने इतना पाप कर्म किए मैं रास्ता तुम कैसे बताऊंगा, मेरा गोदान भरा है, एक महीना एक लाख लोग लागे खत्म होने कर जाएंगे, तो तुम कैसा बताऊंगे? तो जमराज ने सोचने लगे ये क्या भगवान का बता है, इतना पापी आदमी है, तो पापी आदमी को पाप से उद्धार किए ऐसा नहीं, मुक्ति दान कर दे ऐसा नहीं, वैकुंठ भेज दे ऐसा नहीं, ब्रह्मा का दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम दे दे। तो चैतन्य महाप्रभु का करुणा का बाद में सोचते सोचते उधर मूर्छा है, ये करुणा होता है महाप्रदान में, महाप्रभु का गुण महाप्रदान में ऐसा होता है। तो जब मूर्छा पड़ गए तो देवता लोग आकर ऐसे पहुंच गए, तो देवता लोग सोचते हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे ज्ञान कैसे फैलाने? तो देवता लोग जा गए उनके कान पर, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब कीर्तन करना शुरू करते तो दमराज ऐसे लाख देखो बिता गए, दमराज उसके खूब जोर से हरे कृष्ण नाम कीर्तन करके लाख में कुदने लगे, आप लोग हरे नाम से कीर्तन करते थे उल्टा संकीर्तन नाचने लगे। तो इंद्र चंद्र वंश देवता लोग सिद्ध भगवान लाए थे, शिव भगवान देखते हैं जमराज इतना नाचे मैं नाचूंगा, तो जमराज जी उनका शिव पार्वती गणेश कार्तिक लाश में शुरू किए, तो जमराज नाचने से इतना आनंद आ गया तो उनका जटा से सब खोल गया और डमरू के बजे त्रिशूल को फेंक दिए, एकदम नौका होकर नाचते रहते होता था। तो कश्यप ऋषि आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, तो पुत्र लोग लगे ब्रह्मा जी नाचने लगे, अनंत शेष आ गए, सुखदेव गोस्वामी आ गए, हजारों लाखों लाखों मंदिर से तो सब अंतर में कीर्तन होता है, तो उधर कीर्तन होता है, ये महाप्रभु का महिमा होता है। कैसा तो जय विजय, तो वैकुंठ से आए थे तो कुछ संत वैकुंठ लोग वापस चले गए और कुछ संत कृष्ण प्रेम प्राप्त होके तो वो लोग भगवान धाम पर ऐसा चले गए। तो ऐसा जय विजय का ये लीला, जब हम भगवान का लीला श्रवण करते हैं भगवान के साथ असुरों का लीला भी श्रवण करने पड़ते हैं, असुर के चरित्र भी श्रवण करना पड़ता है, तो ये भी भगवान का बहुत निकट रिश्ता होता है। तो मैं इसमें से मेरा कथा समाप्त करूं।